أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الدين. اصول دین اور اصول عقائد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور آج کے درس اور سبق کا عنوان ہے دین اور علم میں رابطہ. بس سوال یہ ہے، اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، یا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا دین مخالف علم ہے؟ کیا دین اسلام اور علم ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ اور علم اور دین میں کیا رابطہ ہے؟ آیا علم اور دین کے درمیان کوئی رابطہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر علم کا عاشق ہے، کوئی بھی ہو، کیونکہ جس چیز کی وجہ سے انسان انسان ہے وہ اس کی عقل ہے. جس چیز کی وجہ سے انسان انسان بنا ہے اور انسان انسان ہے وہ انسان کی عقل ہے، اور عقل کا ثمرہ اور میوہ علم ہے. یہی وجہ ہے اگر ایک جاہل آدمی کو بھی جاہل کہا جائے اور اسے کہے تم جاہل ہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. جاہل کو بھی جاہل کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی طرف علم کی نسبت دی جائے اور اسے صاحب علم کہا جائے، اسے کہیں ڈاکٹر صاحب، اسے کہیں انجینئر صاحب، اسے کہیں آیت اللہ العظمیٰ، اسے کہیں حجت الاسلام والمسلمین، ایک البتہ تنقید نہیں ہے، ایک مثال عرض کر رہا ہوں مطلب کو واضح کرنے کے لیے، اسے کہیں سائنسدان صاحب تو وہ خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی انسانیت اور جس چیز کی وجہ سے انسان انسان ہے وہ اس کی عقل ہے، اور عقل کا میوہ علم ہے. یہی وجہ ہے انسان کو جب عالم کہا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، جاہل کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ولو جاہلی کیوں نہ ہو. دین مبین اسلام جو کہ دین فطرت ہے اور اس کے قوانین اور دستورات انسان کی فطرت کے مطابق وضع ہوئے ہیں، اس نے علم کو نور اور حیات، اور جہل و نادانی کو تاریکی اور موت قرار دیا ہے. اصول کافی میں کتاب ہے، کتاب العلم والجہل کے نام سے، وہاں پہ درجنوں حدیث ہیں. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چونکہ دین مبین اسلام دین فطرت ہے، اسی لیے دین مبین اسلام نے علم کو نور و حیات، اور جہل نادانی کو تاریکی اور موت قرار دیا ہے. اب ہم اصل بحث کی طرف آتے ہیں، اور मज़कूरा सवाल को एक बार फिर दोहराते हैं और वो सवाल ये है कि क्या दीन इल्म का मुखालिफ है, क्या दीन इल्म व दानिश का मुखालिफ है, क्या दीन इस्लाम और इल्म व दानिश एक दूसरे के मुखालिफ है। और आखिरी सवाल, बहुत से सवाल किया जा सकता है, तीसरा सवाल, दीन और इल्म में क्या राबिता है। लिहाजा हमारे इस सबक और इस दरस का इनवान है दीन और इल्म में राबिता। यह बहस इब्तिदा से चली आ रही है, दुनिया इस्लाम और गैर इस्लाम में इस मौजू पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तूल तारीख में लोगों में से दो गुरोह ने, लोगों में से तूल तारीख तारीख इंसान का मुतालिया करें तो तूल तारीख में, तारीख बशरियत में दो गुरोहों ने कोशिश की है कि दीन और इल्म दानिश को एक दूसरे का मुखालिफ जाहिर करें। दो गुरोहों ने, पहला गुरोह जाहिलों का गुरोह है, पहला गुरोह जाहिल आदमी, जाहिल है मगर मुतजाहिर बेदीन, खुद जाहिल है और दीन के अलिफबा से भी सही तरीके से सही तरह वाकिफ नहीं है, लेकिन अपने को दीनदार दीनशनास जाहिर करके आम लोगों की जहालत से फायदा उठाते हुए अपने उयूब पर पर्दा डालने के लिए दीन के नाम पर कहते हैं कि दीन इल्म व दानिश का मुखालिफ है, दीन इल्म व दानिश का मुखालिफ है और तरक्की की राह में रुकावट तसव्वुर करने लगी। और इस गुरोह ने दीन को इल्म इल्म दानिश और इल्म दुश्मन बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया। यह पहला गुरोह, बस पहला गुरोह जिसने कोशिश की है कि यह साबित करे, यह जाहिर करे, अलबत्त साबित तो नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई हकीकत नहीं है, यह जाहिर करें कि दीन इल्म का मुखालिफ है, इल्म और दानिश दीन का मुखालिफ है, इन दोनों की आपस में कोई राब्त कोई राबिता नहीं। यह पहला गुरोह जाहिलों का गुरोह। दूसरा गुरोह तहसील करदा, जाहिरन पढ़ा लिखा है लेकिन इंसानी हुकूक और अखलाकी अकदार को पाईमाल करने वाला दूसरा गुरोह जिसने कोशिश की है कि दीन को इल्म का मुखालिफ जाहिर करे, वो तहसील करदा गुरोह है, जाहिरन पढ़ा लिखा गुरोह, पढ़ा लिखा है लेकिन इंसानी हुकूक और अखलाकी अकदार को पाईमाल करने वाला। इस गुरोह ने भी अपनी गैर इंसानी तौर तरीके पर पर्दा डालने के लिए इल्म दानिश की मुकद्दस छांव तले खीमजन होकर इल्म दानिश और दीन के दरमियान दीवार खड़ी करने की कोशिशें करते आए हैं और कर रहे हैं। ये दूसरा गुरु। तीसरा गुरु जो हमेशा से था और है और रहेगा, वो इन दोनों नेमतों से बहरमंद है और ये गुरु इल्म दानिश और दीन में किसी किस्म की दूरी या मुखालिफत का तसव्वुर तक नहीं करता। क्यों? इसलिए कि यह गुरोह इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि दीन की नजर में, इस्लाम की नजर में इल्म दानिश की क्या अहमियत है, इस हकीकत से बखूबी आगाह है। लिहाजा वो इल्म और दीन और इल्म की मुखालिफत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक मुसलमान होने की हैसियत से, हम बोलने वाला मुसलमान होने की हैसियत से बोल रहा है, हम सुनने वाले मुसलमान हैं और मुखातब मुसलमान हजरत हैं, यह बात नाकाबिल इनकार है कि दीन मुबीन इस्लाम में जिस कदर इल्म दानिश के मुतालिक ताकीद और तायीद की है और इसके हुसूल के इसके हुसूल की तशवीक की गई है, इतना किसी दूसरे मौजू के बारे में जोर नहीं दिया गया है। इस्लामी तालीमात और दीनी अहकाम में हुसूल इल्म को वाजिबात में शुमार किया गया है। इस्लामी और दीनी नुक्ते निगाह से इल्म दानिश की अहमियत को बयान और उसकी मुकम्मल वजाहत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फकत एक हदीस काफी है। अगर इसी हदीस में दिक्कत करें, इसी हदीस में फिक्र करें, इसी एक ही हदीस में गौर करें, तो इस्लाम और दीन के नुक्ते निगाह से इल्म दानिश की अहमियत मुकम्मल तौर पर वाज़ह हो जाएगा। और वह हदीस ये है कि तमाम शिया सुन्नी मुत्तफिकुन अलैह हदीस में से है, वह हदीस ये है कि तमाम उसूल अव्वलिया ची शिया ची सुन्नी दोनों किताबों के हदीस के जवामे हदीसी के उसूल अव्वलिया में यह हदीस मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम। अलबत्ता उसूल अव्वलिया में है और कुछ अहादीस में इस तरह से नकल हुआ है, लेकिन इसको मैंने किस उसूल काफी में या अहले सुन्नत की किसी उसूल अव्वलिया में जवामे रिवाई में इस जुमले के साथ नहीं देखा, मैंने ذاتی तौर पर नहीं देखा। मुमकिन है किसी और ने इस हदीस को उसूल काफी में इस दूसरे ताबीर के साथ पढ़ा हो, लेकिन जो मुत्तफिकुन अलैह तौर पर जो ताबीर वारिद हुई है वो ये है, शिया सुन्नी सब ने नकल किया है, रसूल गिराम इस्लाम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम। ये मुसलमात में से, कतियात में से। दूसरी ताबीर ये है, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لكن لكسي معتبر حديث میں لفظ مسلمہ میں نے خود اپنے اس ناقص تحقیق کے مطابق نہیں دیکھا، حدیث میں ہے لیکن معتبر حدیث میں لفظ مسلمہ وارد نہیں ہوئی۔ بہرحال علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر یا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ एक हदीस, एक और हदीस में फरमाया, उत्लुबुल इल्म वलो कान बिस्वीन। इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन का सफर करना पड़े। दूसरी हदीस, तीसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उत्लुबुल इल्म मिन अल महदी इला लहद। गहवारे से कब्र तक, गौर गहवारे से गौर तक, गहवारे से कब्र तक इल्म हासिल करो। ये तीसरी हदीस। चौथी हदीस में قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, पैगंबर गिरामी इस्लाम ने फरमाया, ये भी मुत्तफिकुन अलैह और मुअतबर तरीन हदीस में से है कि रसूल गिरामी इस्लाम ने फरमाया, कलिमतुल हिकमति वालतुल मुमिन। इल्मी कलाम इल्म दानिश, इल्मी कलाम और हकीमाना सुखन मुमिन की गुमशुदा चीज है। कलिमतुल हिक्मा वालतुल मुमिन, इल्मी कलाम और हकीमाना सुखन मुमिन की गुमशुदा चीज है। फहैसु वजदहा फहुवा अहक्कुन बिहा, बस जिस जगह पाए उसे हासिल करो, क्यों? इसलिए कि क्योंकि फहुआ हक्कुन बिहा, इसलिए कि मुसलमान ऐसा करने का हक रखता है, दूसरों से ज्यादा हक रखता है। हक से अफल तफजील का सेगा है, मुबालगा के लिए आता है, सबसे ज्यादा हक रखता है। इल्म दानिश का हुसूल का हक सबसे ज्यादा मुसलमान को है, मोमिनीन को है खसूसी तौर पर। और आमिर अलमोमिन आलि अबन अबी तालिब से भी वो नकल हुई है कि आमिर अलमोमिनीन ने फरमाया, नाचुल बलागे में भी नकल हुई है, दूसरी किताबों में भी, कि फरमाया अल हिकमत वालतुल मोमिन। पहली हदीस में कलिमतुल हिकमत वालतुल मोमिन, इसमें तावीर में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अल हिकमत वालतुल मोमिन, हकीमाना कलाम और हिकमत मोमिन की गुमशुदा शय है। फतलुबूहा वलो इंदल मुश्रिकीन, उसे हासिल करो, उसे तलब करो, वलो इंदल मुश्रिकीन, अगरचि वो इल्म दानिश मुश्रिक के पास क्यों ना हो, मुश्रिक के पास जाकर मोमिन को चाहिए वो इल्म दानिश हासिल करे, मुसलमान को चाहिए वो इल्म दानिश हासिल करे। फतलुबूहा, उस हिकमत को, गुमशुदा शय को, गुमशुदा चीज को हासिल करो, वलो इंदल मुश्रिकीन, अगरचि वो मुश्रिक के पास क्यों ना हो। क्यों? तकूनु, इसकी वजह यह है, इसकी दलील यह है, उसकी वजह यह है, तकूनु अहक्कु बिहा वाहलु, इसलिए कि तुम मुश्रिक की निस्बत, कुफार की निस्बत तुम इल्म हासिल करने का ज्यादा हक रखता है और ज्यादा अहलियत और सलाहियत रखता है। असल इल्म दानिश का हक मोमिनीन का है, इल्म दानिश मोमिनीन का हक है। मुश्रिकीन ने गासिमाना तरीके से उस पर कब्जा किया हुआ, कुफार ने ताकत के जोर पर कब्जा कर रखा है, वही इल्म दानिश के हकीकी वारिस मुसलमान। लिहाजा मैं इससे ज्यादा तूलानी और बहुत से हदीस है, चूंकि बाज हम माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, एक इजाफा हुआ, एक ही हदीस पर मुझे इतफाक करना चाहिए था, लेकिन इन हदीस में कुछ नुकात हैं जिसकी वजह से मजबूर हुए, तीन हदीसों को आप आजाद की खिदमत में नकल करूं। मजकूरा हदीस का नतीजा ये, नंबर एक, इल्म किसी खास तबके से मखसूस नहीं है, इल्म किसी खास तबके से मखसूस नहीं है। सिर्फ जनरल का बेटा हो, सिर्फ वजीर आजम का बेटा, सिर्फ वजीर आला का बेटा, सिर्फ मुशीर का बेटा इल्म हासिल करने का हक नहीं रखता, बल्कि हर मुसलमान का हक है, और इस्लामी हुकूमत के जिम्मेदारों का फरीजा है सब के लिए एक जैसे मौके फराहम करें, सबका हक है। अला कुल मुस्लिम, सब बराबर है, सबका हक। तबईज जुल्म है। खैर बहरहाल एक फिर तफसील में जा रहा हूं, माजरत चाहता हूं। बस हदीस का, तीन हदीसों का नतीजा यह है, पहला नतीजा यह है, पहला नुकता, इल्म किसी खास तबके से मखसूस नहीं है, बल्कि हर मुसलमान के लिए, हर मुसलमान मर्द के लिए कम अज कम इल्म हासिल करना वाजिब है। फरीजतुन अला कुल मुस्लिम, यह पहला नुकता। दूसरा नुकता, इल्म कोई मुअय्यन मकान नहीं रखता, बल्कि जिस नुकते जहान में इल्म हो वहां जाकर हासिल किया जाए। वलौ काना बिस्सीन, यह जुमला इस बात पर दलालत करती है, इल्म कोई मुअय्यन मकान भी नहीं रखता, बल्कि जिस नुकते जहान में हो वहां जाकर हासिल किया जाए, यह मुसलमानों का फरीजा है। वलौकान बिस्सीन, वलौकान बिलहंद, हम इजाफा कर सकते हैं इसमें, बिस्तीन मिस्ताक के तायीन के अलावा कोई इन्हिसार नहीं है। वलौकान बिल अमरीका, वलौकान बिल अरूबा, वलौकान बिल अफ्रीका, वलौकान बिल जजीरतुल अरब, वलौकान वलौकान, जहां से भी मिले, जिस नुक्ते जहान में हो, वहां जाकर इल्म हासिल करना वाजिब है, इल्म और दानिश हासिल करना। तीसरा नुक्ता, इल्म का कोई मुअय्यन जमान भी नहीं है, इल्म कोई मुअय्यन जमान भी नहीं रखता, उम्र की कैद नहीं है इल्म के हुसूल के लिए, किसी किस्म की महदूदियत नहीं है जमान के हवाले से। मिनल महदी इला लात, गहवारे से गौर तक, गहवारे से कब्र तक, मौत आने तक इल्म हासिल करो, ये मुसलमानों का फरीजा है। और चौथा नुक्ता, इल्म हिकमत के हकीकी वारिस मुसलमान है, इल्म हिकमत के हकीकी वारिस मोमिनीन है, और इल्म हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज है, वालतुल मोमिन, हम पैगंबर इब्राहिम इस्लाम की हदीस में आता, मुस्लिम भी नहीं आया है, हम अमीर मोमिन के हदीस में, वालतुल मोमिन, इल्म दानिश मोमिन की गुमशुदा शय है, मोमिन की गुमशुदा चीज है। और मोमिन दूसरे मुसलमानों, मुशरिकीन और कुफार के मुकाबले में इल्म हिकमत हासिल करने का ज्यादा हक रखता है और अहलियत रखते हैं। लिहाजा इस्लाम ने इतनी ताकीद की है इल्म दानिश पर। अब सवाल यह है, यहां पे एक सवाल जो है बहुत सारे लोगों के जहनों में भी है और होगा, और बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को उठाया है, पूरे तारीख में यह सवाल उठाया जा रहा है कि पैगंबर गिरान इस्लाम के इस फरमान तलबुल इल्म फरीजा, हर एक ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमे ताहरीन की इस हदीस और इस कलाम को अपने इल्म के मुताबिक मानी और तफसीर करने की कोशिश की है। मुतकल्लिमीन ने कहा कि पैगंबर अकरम का मकसद इल्म कलाम और उसूल अकायद का इल्म है। मुफस्सिरीन ने कहा है इल्म तफसीर मुराद है। मुहद्दिसीन ने कहा है इल्म हदीस मकसूद है। और फुकहा ने कहा है इल्म फिक्र मुराद है। उलमा इखलाक ने कहा है इल्म इखलाक मुराद है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम मुतलक है, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल मुस्लिम, मुतलक है। रसूलुल्लाह की कलाम में इतलाक पाया जाता है। यही वजह है कि तमाम मुहक्किकीन इस्लामी ने मुख्तलिफ तफासीर करने के बावजूद, मुख्तलिफ तफसीर करने के बावजूद, मुख्तलिफ मसादीक बयान करने के बावजूद, इस बात पर तमाम मुहक्किकीन का इत्तिफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम में किसी खास इल्म की तरफ इशारा नहीं हुआ है। अगर इसलिए कि अगर कोई खास इल्म मकसूद होता, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल मुस्लिम से, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जरूर तस्लीफ फरमाते। लिहाजा हम कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह की कलाम में इल्म से मुराद हर वो इल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम में तलबुल इल्म फरीज़ा में इल्म से मुराद हर वो इल्म है जो इस्लामी मुआशरे की तरक्की, इस्तिक्लाल और इज्मत का जामिन हो, उसका हुसूल हर मुसलमान पर फर्ज है। हर वो इल्म जो इस्लामी मुआशरे की तरक्की, इस्तिक्लाल और इज्मत का जामिन हो, उसका हुसूल हर मुसलमान पर वाजिब है। ये रसूलुल्लाह के कलाम से हम, इस इत्तलाक से हम इस्तिफादा कर सकते हैं। और हर वो इल्म, वो इल्म दीन ही क्यों ना हो, वो इल्म फिक्र ही क्यों ना हो, وہ لوگ عقائد کا علم ہی کیوں نہ ہو, اور ہر وہ علم جو اسلامی معاشرے کی ذلت کا موجب ہو, اسلام اس علم کا مخالف ہے. اور اگر اس چیز کو میزان اور معیار قرار دے, یعنی ہر وہ علم جو اسلامی معاشرے کی سربلندی کا ضامن ہو, اس کا حصول واجب ہے, اور پیغمبر گرامی اسلام کے اس فرمان کا مصداق عتم ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اور ہر وہ علم جو اسلامی معاشرے کی ذلت کا موجب ہو, اسلام اس علم کا مخالف ہے. اگر اس چیز کو میزان اور معیار اور ملاک قرار دیا جائے تو ہر اس علم کو جو اسلامی معاشرے کے لیے مفید ہو علم دین کہہ سکتے ہیں. لہذا دین, خصوصاً دین مبین اسلام, نہ صرف علم و دانش کا مخالف نہیں ہے بلکہ ان علوم کے حصول کی تشویق اور ترغیب بھی دلاتی ہے, اور تشویق اور ترغیب بھی دلائی گئی ہے دین مبین اسلام میں. لہذا علم اور دین میں, علم اور دانش میں, علم اور دین میں, علم اور دین و دانش میں نہ صرف کسی قسم کی دوری نہیں ہے بلکہ ایک محکم اور مستحکم رابطہ موجود ہے. بس ایک مسلمان کے لیے, ایک مومن کے لیے, ایک دیندار آدمی کے لیے, ایک مذہبی انسان کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ عملی طور پر اصول اسلام کا پابند بھی ہو اور علم و دانش کی دولت سے بہرہ مند بھی. البتہ اگلے مباحث میں ہم اس کی وضاحت کریں گے, اصول دین اور تعلیمات اسلامی اور دینی تعلیمات کا علم بہترین اور بافضیلت ترین علم ہے اسلام کی روشنی میں, جس پر ہم قرآن آیات ہمارے پاس دلیل کے طور پر موجود ہیں, ہم پیغمبر گرامی اور ائمہ طاہرین کی متواتر حدیثیں موجود ہیں کہ ان میں یہ کہا گیا ہے, فرمایا ہے کہ بافضیلت ترین علم اور بہترین علم علم اصول دین, علم توحید, علم عقائد اور دینی تعلیمات کا علم ہے, کیونکہ اس علم کا موضوع خدا ہے, اس علم کا موضوع انسان اور خدا کے درمیان رابطہ ہے, اس علم کا موضوع خدا ہے, اس علم کا نتیجہ اور ثمرہ خدا پر ایمان اور عمل صالح ہے جو کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے, اور فرد اور معاشرے کے حقوق کو پورا کرنے کا سبب ہے. تو بحث کا خلاصہ یہ ہوا, آج کے درس اور سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان فطری طور پر علم کا عاشق ہے, کیونکہ جس چیز کی وجہ سے انسان انسان بنا ہے وہ اس کی عقل ہے, اور عقل کا میوہ علم. تو نے تاریخ میں دو گروہوں نے اپنی کمزوریوں اور اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے کوششیں کی ہے کہ دین اور علم کو ایک دوسرے کا مخالف ظاہر کرے, اور دین کو افیون اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ, اور علم و دانش کا دشمن بنا کر پیش کرے. لیکن یہ حقیقت, اس سے حقیقت کا کوئی واسطہ, دور کا بھی واسطہ نہیں ہے, یہ صرف اپنی کمزوری اور اپنے عیوب کو چھپانے کی خاطر انہوں نے ایسا کیا ہے. ان کے مقابلے میں تیسرا گروہ جو دین و مذہب اور علم و دانش کی دونوں نعمتوں سے بہرہ مند رہے ہیں اور ہیں, اور اس گروہ کی نظر میں علم و دانش اور دین اور دینداری میں کسی قسم کی دوری یا مخالفت کا تصور بھی غلط ہے, کیونکہ دین مبین اسلام میں جس قدر علم و دانش کی تحقیق اور تشویق کی گئی ہے اتنا کسی دوسرے موضوع کے بارے میں زور نہیں دیا گیا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہوا کہ علم کسی خاص طبقے سے مخصوص نہیں ہے, اس لیے فریضت علی کل مسلم. تیسرا نقطہ یہ ہوا علم کوئی معین مکان بھی نہیں رکھتا ولو کان بالسین. چوتھا نقطہ یہ کہ کوئی علم کوئی معین زمان بھی نہیں رکھتا من المہدی الی اللہ. چوتھا نقطہ یہ ہوا علم مومن کا گم شدہ ہے جس جگہ اور جس کے پاس پائے ولو کافر اور مشرک کے پاس اسے حاصل کرو کیونکہ احق بها, کیونکہ مومن مشرک اور کافر کی نسبت علم حاصل کرنے کا زیادہ حقدار ہے اور زیادہ حق رکھتا ہے. اور آخری نقطہ یہ کہ علم اور دین میں نہ صرف کسی قسم کی دوری نہیں ہے بلکہ ایک مستحکم رابطہ بھی موجود ہے. لہذا ایک مسلمان کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ عملی طور پر اصول دین اور اصول اسلام کا پائبند بھی ہو, دیندار بھی ہو, مذہبی بھی ہو اور علم و دانش سے بہرہ مند بھی. اور آخری نقطہ, اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے حدیث کی روشنی میں علم کا معیار اور میزان یہ ہے, علم کے حصول کے وجوب یا حرمت کے کا معیار اور میزان یہ ہے. ممکن ہے کوئی اس پہ اشکال کرے, لیکن میں اپنے نقطۂ نگاہ سے اور بعض علماء کے نقطۂ نگاہ نظر کو بیان کر رہا ہوں. علم کا معیار اور میزان یہ ہے کہ ہر وہ علم, اور واقع عقل بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے, ہر وہ علم جو اسلامی معاشرے کی ترقی, استقلال, آزادی, عظمت کا ضامن ہو, اسلام اس علم کا حامی ہے اور اس کے حصول کو واجب قرار دیتا ہے. اور ہر وہ علم جو اسلامی معاشرے کی ذلت کا سبب اور موجب ہو, اسلام اس علم کا مخالف ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو حقیقی معنوں میں اور خصوصاً اصول دین اور اصول عقائد کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان پر ایمان لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے اور ان کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں. والسلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته.